हरे हरे
हरे कृष्ण। आज जगन्नाथ मिश्रा उत्सव है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य के बाद नंद उत्सव होता है। नंद बाबा बड़े उत्साह के साथ कृष्ण के जन्मदिन को मनाते हैं और सारे ब्रजवासी गाय गैया ग्वाल गोप गोपियां बधाई देने के लिए आते हैं और बहुत बड़ा उत्सव होता है। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य के बाद जगन्नाथ मिश्रा जी के स्थान के ऊपर जो एक तो सारे देवी देवता है ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का रूप धारण करके और बहुत उपहार लेकर पूजा की सामग्री लेकर श्री गौर हरि के दर्शन के लिए आए, और जो श्री श्रीवास पंडित जी की पत्नी मालिनी देवी और अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी पालकी में चढ़ के बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण स्वर्ण आदि लेकर बालक के दर्शन के लिए आए, और जगन्नाथ मिश्रा को जितना भी उपहार महाप्रभु के प्रकट्य के समय लोगों ने दिया, जगन्नाथ मिश्रा ने उतनी ही उदारता के साथ उन सब चीजों का ब्राह्मणों को और जो गाने वाले महिमा गाने वाले कुछ मांगने वाले आए थे उनको उदारता के साथ एक सत ब्राह्मण के चरण चिन्हों में चलते हुए जो मिला था उसको उदारता के साथ दान कर दिया। तो आज जनक जगन्नाथ मिश्रा का उत्सव उसका दिन है। पहले दिन हमने भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार का बाहर अंग कारण, और बाहर अंग कारण था युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को मानव मातर के कल्याण के लिए त्रिभुवन के मंगल के लिए शुभारंभ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के संग अपने संगियों के साथियों के संग और भगवान के नाम का मुख्य रूप से स्तर लेकर अपने विस्तार अपना विस्तार चैतन्य महाप्रभु का विस्तार है नित्यानंद प्रभु, और फिर आगे विस्तार है अद्वैत आचार्य। ये तीनों विष्णु तत्व हैं, गदाधर पंडित शक्ति तत्व है, और श्रीवास जीव तत्व है, लेकिन शुद्ध भक्त नारद का प्रकट्य है। सो ऐसे श्री चेतन महाप्रभु के बाहर अंग के अवतार का कारण है। अब श्री चेतन महाप्रभु के अंतरंग अवतार का कारण, चेतन महाप्रभु ने अवतार लिया उसका अंतरंग कारण क्या थिया? तो अंतरंग कारण में एक श्लोक कविराज गोस्वामी ने 14 श्लोक पहले चेतन चरितमृत में हमने आपको कहा 14 श्लोक हैं, जो 14 श्लोक पहले संस्कृत में है उसमें ये श्लोक महाप्रभु के अंतरंग अवतार का कारण है। राधा कृष्ण प्रण्या विकर्ति हलादिनी शक्ति अस्माद्। राधा क्या है? बोला कृष्ण की प्रणय। प्रणय क्या कहते हैं? हम प्रायः कहते हैं कि हमारे साधन भक्ति का जो हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम जागृत करना। तो प्रेम जागृत करने के लिए साधन भक्ति में प्रेम तक पहुंचने के लिए
श्री अरूप गोस्वामी ने 8 स्तर बताए हैं। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर साधु का संग होना चाहिए, और फिर तीसरा है भजन क्रिया का मतलब गुरु का आश्रय लेके और नाम सुमरण और सेवा शुरू करनी चाहिए। तो चौथा है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हमारे जीवन में कई जन्मों से अनर्थ आए हुए हैं, और मुख्य अर्थ सबसे बड़ा अनर्थ है कि शरीर और उसकी उपाधियों को ही हमने सब मान के रखा है और आत्मा के उद्धार के विषय में हम अचेत हैं, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। तो अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद आता है निष्ठा, निष्ठा के बाद आता है रुचि। निष्ठा का मतलब विश्वास है कि कृष्ण भक्ति एक रास्ता है, इसी के ऊपर चलना है हमको, अब इधर उधर नहीं जाना है। लेकिन रुचि का मतलब उसमें हमको अब स्वाद आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। उसके बाद है आसक्ति, यहां तक है साधन भक्ति। इसके बाद भाव भक्ति का उदय होता है, वो हमारे अंदर पहले से है, और भाव जब परिपक्व होता है तो प्रेम होता है। लेकिन इसके आगे रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीरमणि आदि शास्त्रों में प्रेम के ऊपर के वो 8 स्तर और हैं। प्रेम तक पहुंचने के बाद, प्रेम के बाद है स्नेह, स्नेह के बाद है मान। मान का मतलब प्रेम में रूठना, मान करके बैठ जाना। मान के बाद है प्रणय, प्रणय का मतलब प्रेम करने वाले में और प्रेमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं, ये प्रणय। प्रणय के बाद भाव, महाभाव, रूढ़ भाव। तो इसमें राधा रानी का जो स्तर है सबसे ऊपर का स्तर है महाभाव, महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी। तो ये प्रणय शब्द जो है यहां है, राधा है कृष्णेर प्रणय विकृति। प्रणय का मतलब जब प्रीतम और प्रेमी में कोई अंतर न रह जाए, उस स्तर में कृष्ण ही अपने आप को राधा के रूप में परिवर्तित करते हैं। विकृति का वैसे अर्थ है, अंग्रेजी में लिखा है प्रभुपाद, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कृष्ण ही राधा के रूप में प्रकट होते हैं। कब? जब कृष्ण प्रेम प्रणय के स्तर के ऊपर होते हैं। एक भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है एकादशी के विषय में, विशेष रूप से शुद्ध भक्त चरण रेणु, उसमें है कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की है उन स्थानों के ऊपर, या गौर जहां चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की है उन स्तरों के, उन स्थानों के ऊपर मैं भ्रमण करूंगा, दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन लिखा है प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्त संगे का मतलब जो भगवान के प्रेम में पक्के हुए हैं उनके संग दर्शन करने जाऊंगा, तो वहां के दर्शन का लाभ होगा। नहीं तो ऐसे वृंदावन जाएं कि मायापुर जाएं, तो ऐसे बहुत से पर्यटक जाते हैं लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो प्रणयी भक्त संगे, वहां शब्द है प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्त संगे इसका मतलब जो राधा कृष्ण के तत्व को समझने का स्तर पे पहुंचे हैं उनके संग में तीर्थ यात्रा करने से तीर्थ का लाभ होता है। तो यहां राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा कृष्ण की प्रेम के ऊपर के स्तर के ऊपर परिवर्तित रूप है। कौन है राधा? हलादिनी शक्ति अस्माद, उसको हलादिनी शक्ति कहते हैं, वो हलादिनी शक्ति है। उससे मतलब इन दोनों से, कृष्ण और राधा, कृष्ण शक्तिमान राधा शक्ति, इन दोनों से चैतन्याख्यम, जिसको चैतन्य चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। आख्यम का मतलब जिसको कहा जाता है, प्रकटम प्रकट हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु किससे प्रकट हुआ? राधा और कृष्ण दोनों से। तो पहले बताया राधा कौन है, कृष्ण का प्रणय विकार है, प्रणय विकृति है, और वो क्या है, वो हलादिनी शक्ति है। तो कृष्ण और उसकी हलादिनी शक्ति के साथ, हलादिनी शक्ति को कभी कहते हैं भक्ति नैपुण्य, भक्ति में निपुण। तो कहते कृष्ण और चेतना महाप्रभु एक ही है, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। कृष्ण उसमें जोड़ेंगे जब भक्ति नैपुण्य, तब चैतन्य महाप्रभु होगा। तो कृष्ण से ज्यादा दयालु चैतन्य महाप्रभु क्यों है, क्योंकि राधा रानी उसके साथ मिली हुई है, राधा भाव में है, इसलिए अति उदार गोरा महावदन्याय। क्योंकि भक्ति देने के लिए जब भगवान आते हैं तो भक्ति तो भगवान कृष्ण की भक्ति कृष्ण के पास तो नहीं है, कृष्ण की भक्ति कृष्ण के भक्तों के पास है, कृष्ण की भक्ति कृष्ण के भक्तों के पास है, और कृष्ण के भक्तों में श्रोमणी है राधा रानी। तो राधा रानी भक्ति निपुण है, वो कृष्ण अपने साथ लेके आते हैं तब भक्ति दे पाते, नहीं तो भक्ति कैसे देंगे। इसलिए कृष्ण अवतार में भी स्वयं भक्ति नहीं दे सकते, एक नियम कृष्ण ने बना रखा है कि मैं अगर भक्ति, पहले तो मेरे पास मेरी अपनी भक्ति तो होती नहीं है, मेरी भक्ति तो भक्तों के पास है, और मैं अगर भक्ति दूं तो भगवान हो सबको दूं या किसी को नहीं दूं, किसी को दूं किसी को नहीं दूं तो भेदभाव हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भक्ति देने का सारा काम भक्तों को दे दिया, भक्त जिसको चाहे उसको भक्ति दे सकते। तो भगवान जब भक्ति देने आते हैं तो भक्ति नैपुण्य राधा रानी को अपने के अंदर मिलाकर आते हैं। तो जो भक्ति देती है वो राधा रानी देती है, तो हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमको कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगाओ। तो यहां लिखा है चेतना महाप्रभु प्रकट हुए आख्यम प्रकटम अधुना, अधुना का मतलब अभी, अभी इस वक्त अधुना। एक लाइन बीच में, राधा कृष्ण प्रिय विकर्ति हलादिनी शक्ति अस्माद। अब कहते हैं एक आत्मा नाओ अपि, वो एक है दो नहीं है, राधा कृष्ण दो नहीं है एक आत्मा। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में जब भी कहते राधा कृष्ण इज गॉड, कभी नहीं बोलते आर गॉड, राधा और कृष्ण भगवान है, है नहीं भगवान है। राधा माता का भगवान का रूप है और कृष्ण पिता भगवान का रूप है, तो भगवान माता भी है पिता भी है। तो माता का भगवान का रूप राधा रानी है, जो कृष्ण का अपना ही शक्ति का विस्तार है। तो एक आत्मा, वो एक ही आत्मा है, एक आत्मा हो, एक आत्मा, एक आत्मनव, नव का मतलब दोनों, दोनों एक ही आत्मा है, राधा और कृष्ण दोनों एक ही आत्मा है। भूमि के ऊपर धरती के ऊपर एक आत्मा अपि, एक ही आत्मा है फिर भी भूमि के ऊपर पूरा, पहले भूमि के ऊपर अनादि काल से, पहले से ही वो राधा कृष्ण के रूप में आते हैं। ये राधा कृष्ण तो अनादि काल से, एक बार कलकत्ता में जब इस्कान का पहले दिनों में मंदिर था तो किसी बड़े जमींदार का कोठी थी, उसमें मंदिर था, तो जमींदार बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु का भक्त था। तो प्रभुपाद जी का एक पहले सन्यासियों में एक अच्युतानंद नाम का शिष्य था, जिन्होंने पहले बंगाली सारे भजन अंग्रेजी में लिखे थे, बंगाली सीखा था, तो पहले जो वैष्णव भजन है ना वो अच्युतानंद स्वामी के लिखे हुए हैं। तो वो जमींदार कहने लगा कि देखो चीनी होती है, दूध होता है, फिर दोनों को मिला के रसगुल्ला बनाते हैं, तो रसगुल्ला तो बहुत स्वादिष्ट होता है। बोला ठीक है, बोला ऐसे पहले राधा होती है फिर कृष्ण होता है, राधा कृष्ण दोनों होते हैं जैसे चीनी और दूध है, और दोनों को मिलके बन गया रसगुल्ला, तो रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। तो वो ये उदाहरण दे रहा था, तो अच्युतानंद महाराज को समझ में नहीं आया, प्रभुपाद जी से आके पूछा, प्रभुपाद जी ये जमींदार जिसके हम घर लिया है मंदिर के लिए वो ऐसे कह रहा है, तो अब बताइए क्या है। प्रभुपाद ने कहा देखो पहले चीनी और दूध नहीं होता तो रसगुल्ला किससे बनता, तो राधा कृष्ण तो पहले है ना, इसका मतलब पहले राधा कृष्ण है तब दोनों को मिलाया तब रसगुल्ला बना ना। तो यहां जो लिखा है राधा कृष्ण पूरा पहले से ही दो है, एक शक्ति एक शक्तिमान पहले से है, तो पहले तो प्रभुपाद ने यह बताया कि पहले चीनी है दूध है तब रसगुल्ला बना, बाद में रसगुल्ला बना तो चैतन्य महाप्रभु फिर उन दोनों के मिलने से बने। फिर अच्युतानंद महाराज ने पूछा ये तो ठीक है समझ में आया, अब दोनों में से महान कौन है। तो ये कहा जाए तो प्रभुपाद जी थोड़ी देर शांत रहे अपने कमरे में, फिर दीवार में लगे हुए फोटो को देखा जिसमें राधा रानी के चरणों को कृष्ण मनाने के लिए जो है वो संवाहन कर रहे थे। जब राधा रानी माननी बन जाती है मान करके बैठती है तो कृष्ण उसको मना रहे थे। एक बरसाना में कभी जाएंगे तो बरसाना में ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में वहां रहते हैं और उस पर्वत के चार मुख हैं, तो दानगढ़ विलासगढ़ मानगढ़, तो मानगढ़ एक जगह है जहां राधा रानी मान करके बैठी थी और कृष्ण मनाने के गए थे, उसका नाम ही जगह का मानगढ़ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो राधा रानी महान है, कृष्ण देखो उनके चरण को सेवा कर रहा है, तो इसका मतलब राधा रानी महान हुई ना। फिर प्रभुपाद ने एक और दूसरा चित्र देखा लगा हुआ था फोटो जिसमें कृष्ण नंद बाबा के खड़ाऊ चप्पल सर के ऊपर उठा के आ रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा देखो नंद बाबा बड़े हैं भाई, कृष्ण भगवान होते हुए उनका चप्पल उठा के आ रहा है। प्रभुपाद ने निर्णय दे के कहा कि भक्त भगवान से बड़ा होता है, भक्त भगवान से बड़ा होता है क्योंकि वो भगवान से मिलाने का काम करता है, भक्त भगवान से बड़ा इसलिए होता है कि वो जगह जगह जाके भगवान की महिमा को गाता है, भगवान से ज्यादा दयालु भक्त है। भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं लेकिन सबको थोड़ी कहते हैं कि तुम भक्ति करो, केवल देखते रहते, लेकिन भक्त सबको प्रेरणा देके भक्ति कराता है। तो चेतना महाप्रभु क्योंकि भक्त के रूप में आए हैं इसलिए महान है, क्योंकि भक्त महान होता है भगवान से। प्रभुपाद फिर कभी कभी कटाक्ष में कहते थे ये मायावादी लोग कहते हैं कि हम भगवान बनना चाहते हैं, तो बनने दो, हम भगवान के बाप बनना चाहते हैं क्योंकि भगवान बाप की सेवा करेगा ना कि भगवान का पिता बन जाएंगे तो भगवान सेवा करेगा। तो भक्त भगवान से महान है, क्यों भगवान से भक्त महान है, भाई गंगा है उधर जाएंगे तब दर्शन होगा, लेकिन भक्त जो है वो चलता फिरता तीर्थ है, जहां जाए वहां भगवान का भक्ति का दर्शन करा देता है। तो भक्त के रूप में भगवान जब आते हैं तब अति दयालु होते हैं, तब भगवान की महानता उदारता अति उदार गौरा बड़ी उदारता का पता लगता है, अति दयालुता का पता लगता है, क्योंकि भक्त दयालु हृदय है। भाई भक्त किसी का दुख देख नहीं सकता पर दुख दुखी है, वैष्णव जन ते को जाने जो पीड़ पराई जाने रे, दूसरे के दुख को जो जानता है वो वैष्णव है। तो यहां लिखा है जो पहले राधा कृष्ण थे, जिसमें राधा कृष्ण का प्रणय विकार था है, जिसको हलादिनी शक्ति कहते हैं, वो दोनों एक ही है, पहले वो दो के रूप में रहते थे, एक ही आत्मा है, देह भेदम गतो, केवल शरीर का अंतर है, केवल शरीर में अंतर है। एक बार प्रयागराज में प्रभुपाद जी दो बार कुंभ मेले में गए, इस्कान बनाने के बाद। उससे पहले तो उनका प्रयागराज में दवाओं का फार्मेसी था ही, प्रयाग फार्मेसी। तो उन्होंने कुंभ मेले की मानता का पता था, तो इन्होंने इसलिए उन्होंने जब इस्कान बनाया तो कुंभ मेले में दो बार गया, अर्ध कुंभ में गए, पूर्ण कुंभ में गए, 71 में भी गए और 77 में भी गए, 6 साल के बाद अर्ध कुंभ में भी गए। उनका ये मानना था कि सारा साधु समाज वहाँ आता है, वहाँ इस्कान के नाम संकीर्तन करने से, पुस्तक वितरण करने से और प्रसाद वितरण करने से हम साधु समाज में मान्यता और सम्मानता दोनों प्राप्त करेंगे, क्योंकि साधु समाज में मान्यता होनी चाहिए। जो हमारी दृष्टिकोण से अभी तक भी इस्कान के भक्तों को वो मान्यता नहीं है साधु समाज में, जैसे सामान्य साधुओं को है। ये हम अभी तक भी हम देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम साधु समाज है उसके अंदर हम नहीं हैं। तो एक कुंभ मेले में हमने अनुभव करके फिर प्रयास किया कि हम भी एक प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय मध्व संप्रदाय के अंतर जो हमारा स्थान है उसको हमने एक हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज को उसमें महंत बनाया कि भाई हमारी भी साधु समाज में अब उठना बैठना कुंभ मेले में होता है, हमारा भी उनके साथ एक नाम से हमारा भी पहचान है इस खालसा उसमें है। वहां प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य मधुद्वेश महाराज और एक माता जी प्रिय शिष्य उनकी जो गोविंदम आदि पुरुषम गाया है जमुना देवी, ये दोनों आपस में किसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और विषय ये था कि कृष्ण और बलराम में भी कोई भेद नहीं है। ये भी चेतना चरितमृत में लिखा है, बस केवल रंग का अंतर है। यहां लिखा है देह भेदो, भाई देह में फर्क है। राजा रानी का शरीर गोरे रंग का है, कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण का है, बस गोर और श्याम का वर्ण है। और वहां भी लिखा है बलराम जी दूध के फैन जैसे गोरे हैं और कृष्ण श्याम है, बस इतना ही अंतर है, दोनों में अंतर नहीं है। क्यों? कृष्ण ही अपने आप को बलराम में परिवर्तित करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ऐसे लिखा है तो मध्वद्वेष महाराज कहने लगे कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। और जमुना देवी कहने लगी नहीं अंतर है। बोला क्या अंतर है? बोला कृष्ण राधा रानी के साथ रास विहार कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकता। ये बात तो ये भी ठीक है भाई, ये अंतर तो है। तो उनके आपस में बात को सुन रहे थे तमाल कृष्ण महाराज, वो चले गए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद से पूछने लगे श्रील प्रभुपाद ये देखो दोनों के बीच में बहुत बड़ा प्रश्न उत्तर हो रहा है कि कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, ऐसे महाराज मधुद्वेश कह रहे। प्रभुपाद का सही है, चेतना चरित में लिखा है कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग का भेद है। तो महाराज कहने लगे तमाल कृष्ण, फिर प्रभुपाद जी जमुना महारानी कहती है भाई भेद है। बोला क्या भेद है? वो कहती है राधा रानी के साथ कृष्ण विहार कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकता है। बोला ये भी सही है। तो बोला दोनों कैसे सही हो सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा आप भी सही हो भाई, दोनों सही नहीं हो सकते, आप भी सही हो। इसका मतलब ये कि जितना जिसका अनुभव है और जितना जिसका ऊपर का प्रेम का स्तर है उतना उसकी अनुभूति है, वो अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे सही है। पर गिरिराज महाराज ये कथा बताते हुए कहते हैं कि हमने इस कथा को सुना उधर जब, तो हमको ऐसे लगा कि 5 अंधे हाथी को हाथ लगाएं और जो पांव को हाथ लगाए कहे कि ये खंभा है तो सच्चा है, झूठा नहीं है। एक आदमी उसको पेट को हाथ लगाए कहे दीवार है तो वो भी ठीक है। एक सूंड को हाथ लगाए कहे कि ये पेड़ का डाली है तो भी गलत नहीं है। पूंछ को हाथ लगाने वाला कहे कि ये रस्सी है तो भी गलत नहीं है। और कान को हाथ लगाए कहे ये बड़ा पंखा है तो भी चलेगा। लेकिन ये चारों सही होते हुए भी गलत है, क्योंकि हाथी है इसका तो पता नहीं है। तो ऐसे हमारी भी आध्यात्मिक इतनी दृष्टि नहीं है जितना हमको हाथ लगा के पता लगाते हैं वो हमको वैसे लगता है। तो ऐसे राधा और कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं है, यहां लिखा है दोनों में कोई भेद नहीं है, देह भेदम गतौ तौ, उन दोनों में केवल देह का अंतर है। देह का अंतर का मतलब है कि एक गोरे रंग की देह है और एक शक्ति की देह है, शक्तिमान की देह है, बस इतना अंतर है। फिर कहते हैं वही चैतन्याख्याम प्रकटम, वो दोनों तौ, वो दोनों चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रकट हुए। कब? अधुना, अभी अभी। तद दिव्यम चैक्यम आप्तम चैक्यम, तद दिव्यम चैक्यम, वो दोनों दिव्य रूप से मिलके एक हो गए। जो पहले दो थे वो दिव्य रूप से मिलके एक, तद वो दिव्यम, दोनों दिव्य हैं, एकतम च एकतम, वो दोनों एक हो गए। आपतम, वो दोनों एक हो गए और एक रूप में प्रकट हो गए। कैसे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, रूप में। बोला फिर कैसे लगते हैं? अब एक हो गए तो विशेष क्या है उसमें? भाई दो मिलके एक हो जाएं तो बाहर से उसकी पहचान, भाई उसमें मुख्य कौन दिख रहा है? तो कहते हैं राधा भाव, उसके अंदर जो भाव है राधा का है कृष्ण दोनों साथ हैं, लेकिन प्रधानता राधा के भाव की है, कृष्ण के भाव की प्रधानता नहीं है, राधा के भाव की प्रधानता है। राधा भाव द्युति, द्युति का मतलब रंग, स्वललितम स्वलितम स्वलितम, वो राधा रानी के कांति को और द्युति को, द्युति और कांति, द्युति के लिए प्रभुपाद जी शब्द का अर्थ लिखते हैं, द्युति का मतलब उनका प्रकाश, और स्वलितम का मतलब उस द्युति के साथ। तो है कृष्ण लेकिन आए गोरे रंग में राधा रानी के। तो कभी ऐसे कहते हैं कृष्ण भगवान ने विचार किया कि मेरे को जाना है भक्त बनकर, भक्ति सिखाना है, तो भक्ति तो राधा रानी के पास है, उसके हृदय में है। अब राधा रानी कैसे भक्ति अपनी कृष्ण को दे दे? तो कृष्ण तो बहुत प्रसिद्ध चोर है, नवनित तस्कर बड़ा चोर है, नवनित कहते हैं मक्खन को, मक्खन का चोर है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में नवनीत चोर के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर लिखा है कि गोपियों के वस्त्र भी चोरता चुराता है, कौन से? दो कोलम, दो कोलम वो वस्त्र जिसके दो पट्टे होते हैं, जैसे दुपट्टा है, वो वस्त्र चुराते हैं, अपने भक्तों के अनंत जन्म की पाप राशि का भी चोरी करते हैं। केवल चोर माखन के नहीं है, बहुत सुंदर भजन है ये कृष्ण, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। तो कृष्ण ने राधा रानी के हृदय से अपनी प्रेम भक्ति को चोरी करना चाहा, तो चोर को तो मालिक पकड़ेगा ना, तो जैसे राधा रानी ने उसको पकड़ना चाहा तो बाहर से तो पकड़ने वाला नजर आएगा, चोर तो अंदर चला गया, चोर तो उसके नीचे आ गया, ऊपर से पकड़ने वाला आ गया। तो राधा रानी बाहर से राधा रानी दिख रही है, अंदर में कृष्ण है। तो चेतना महाप्रभु प्रकट हुए तो राधा द्युतिम स्वलितम नवमी, नवमी का मतलब नमस्कार करता हूं, कृष्ण स्वरूपम, स्वरूप कृष्ण का है, द्युति राधा रानी की, दोनों में एकता किस बात की है? बाकी जो राधा रानी रह गई, अब क्या राधा रानी का भाव ले लिया, और राधा रानी का भाव क्या है? दया का भाव है, करुणामयी राधे, दयामयी राधे, करुणा भरिते राधे। तो करुणा भरिते राधे का मतलब है राधा रानी सबको कृष्ण की भक्ति में लगाने में प्रसन्न होती है। ये तो चैतन्य महाप्रभु में चला गया, बाकी जो राधा में सेवा के और गुण है जो किससे कृष्ण को प्रसन्न करती है, वो राधा रानी का शेष भाग जो बच गया वो गदाधर के रूप में प्रकट हुआ। तो गदाधर भी तो राधा रानी है ना, वो भी भगवान की अंतरंग शक्ति है ना। तो एक भाव जो है राधा रानी का वो चेतना महाप्रभु के अंदर चला गया। कौन सा? विशेष रूप से प्रेम भक्ति का प्रसाद प्रदान करने वाला, और जो शेष सेवा का भाव था वो गदाधर के रूप में सदा ही गदाधर चेतना महाप्रभु के साथ सदा ही रहे। वो तो फिर क्षेत्र सन्यासी होकर 18 साल तक जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं गए, वहीं रहे, तोटा गोपीनाथ में रहते थे और रोज एक दूसरे से प्रेम से बैठ के हरि कथा कीर्तन करते थे। तो ये श्लोक जो है ये मुख्य श्लोक है। अब इसकी सामान्य भाषा में, बंगला भाषा में कहते राधा कृष्ण एकात्मा, वहां एकत्वम था ना, दुई देह धरी, दो सिर्फ शरीर है, आत्मा एक है दो शरीर है, अन्यो ने विलास रस आस्वादन करी, एक दूसरे के साथ रस का आस्वादन करने के लिए एक से दो हो गए। ऐसे लिखा है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में खड़े थे और रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के मन में एक संकल्प उठा कि मुझे रस आस्वादन करना चाहिए। तो भगवान के अपने संकल्प से भगवान के वाम भाग से एक बहुत सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई। तो भगवान ने उसके ऊपर बड़े स्नेह के साथ दृष्टि डाली तो और सुंदर होके दौड़ी और दौड़ के एक फूल उठाया और भगवान के चरणों में अर्पण किया। तो जो दौड़ने को संस्कृत में धावना कहते हैं और फूल अर्पण करने को आराधना कहते हैं, तो उनका नाम हो गया राधा। तो राधा ऐसे गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के अपने अंग से प्रकट हुई है। तो यहां लिखा है कि राधा कृष्ण एकात्मा द्वि देह धरी, अन्यो अन्य एक दूसरे को विलासे विलास करना, विलास का मतलब एक दूसरे प्रेम का रस आस्वादन करना, आनंद लेना, विलास रस आस्वादन करे, एक दूसरे के रस का आना, एक से दो हो गए। प्रभुपाद ने इसमें लिखा है कि ये बात समझना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। से दुई एक एबे चेतना गोसाई, वो दोनों फिर एक हो गए, उसको कहते चेतना महाप्रभु। रसास्वादिते दोहूं हैला एक ठाई, आज दोनों एक ही जगह पे रस आस्वादन करने के लिए प्रकट हो गए हैं। क्यों हुए हैं, अंतरंग कारण क्या है? तो कहते हैं पहले इति लागे आगे करी तार विवरण, पहले ये बताऊं राधा और कृष्ण है कौन। या हैते है गौर महिमा कथन, तब आप चेतना महाप्रभु की महिमा को समझ सकेंगे। तो अंतरंग कारण क्या है? कारण यह है कि राधा रानी में को मुझसे मिलने में क्या सुख मिलता है इसका मुझे पता नहीं। मेरे रूप में ऐसा क्या आकर्षण है कि राधा सब कुछ छोड़कर उसी से उसी को देखना चाहती है? और जब राधा रानी मुझसे मिलती है तो उसको क्या सुख मिलता है उसका भी मुझे पता नहीं है। तो कृष्ण के अंदर ये लालसाएं पैदा हुई, तो इन लालसाओं को पूरा करने के लिए वो चेतना महाप्रभु के राधा भाव में आकर और कृष्ण कृष्ण कह के कृष्ण के रूप, कृष्ण से मिलने में जो रस आता है उसका आस्वादन करने लगे। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल में इतना समय बहुत है। तो बहुत सुंदर श्लोक है राधा रानी का और इनके तत्व का, लेकिन आप लोगों को काम पे आज छुट्टी को तो नहीं है, रंग वाली छुट्टी है। हरे कृष्णा। एक बार बार फोन आ रहा, चलो बाद में करेंगे फोन वाले को। तो दो तीन श्लोक और पढ़ते हैं। अब राधा रानी का तत्व बताते हैं। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार, दोबारा उसको अभी बंगाली में कह रहे हैं। राधा क्या है? कृष्ण का प्रणय के समय परिवर्तन है। स्वरूप शक्ति, और राधा रानी के लिए दूसरा शब्द है स्वरूप शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो स्वरूप शक्ति का नाम क्या? हलादिनी नाम यहां, उसका नाम है हलादिनी शक्ति। तो भगवान की शक्तियां बाहरंग शक्ति, अंदर अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति के तीन विभाग है। अंतरंग शक्ति का एक विभाग है संवित शक्ति, सैंदनी शक्ति, हलादिनी शक्ति। सैंदनी शक्ति का मतलब है भगवान सत्य है, सत्य सैंदनी है कि भगवान के अस्तित्व है वो सैंदनी। संवित है चित्त, भगवान को जानने वाली ज्ञान, और हलादिनी है आनंद, सच्चित आनंद भगवान को कहते हैं ना। तो सत्य है सैंदनी शक्ति, चित्त है संवित शक्ति, और आनंद है हलादिनी शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां भगवान की जो हैं इनको स्वरूप शक्ति कहते हैं, ये सब तीनों स्वरूप शक्ति में आती हैं। लेकिन यहाँ राजा रानी विशेष रूप से हलादिनी शक्ति, यहाँ नाम उसका नाम है, स्वरूप शक्ति का नाम है हलादिनी शक्ति। फिर कहते हैं क्या काम क्या है हलादिनी शक्ति का, क्या करती है राजा रानी, इसका मतलब राजा रानी क्या करती है। हलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, कृष्ण को जो आनंद है, कृष्ण सचित आनंद है, तो आनंद का रस आस्वादन हलादिनी शक्ति कराती है। मतलब कृष्ण को रसास्वादन कराती है तो हम काय के लिए उसकी पूजा करें, हमारा क्या उससे लेना देना। तो कहते हैं हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, भक्तों का पोषण, जैसे माँ बच्चे का पोषण करती है, पालन पोषण, पोषण का मतलब रक्षण, पोषण का मतलब पालन और रक्षण दोनों। तो हलादिनी शक्ति भक्तों का पोषण करती है, इसलिए वो माता है, इसलिए भगवान का माता का रूप है राजा रानी, वो हमारी भक्ति का, भक्त और भक्ति दोनों का। इसलिए कहते हैं कि भगवान भक्त और भक्ति, भगवान भक्त और भक्ति तीनों भगवान की स्वरूप शक्ति के अधीन है, माया शक्ति का इनके ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। न भक्ति माया शक्ति के अंतर्गत आती है, न भक्त आता है, न भगवान आता है, ये सब राधा रानी के अधीन है। तो दो काम राधा रानी के यहाँ हैं, हलादिनी शक्ति के दो काम है, एक तो कृष्ण को आनंद आस्वादन कराना और दूसरा भक्तों का पोषण और रक्षण करना, ये राधा रानी का विशेष काम है। सचिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, अब वही बात कहते हैं तीनों शक्तियों का वर्णन करने के लिए, कृष्ण क्या है, सचिदानंद स्वरूप है, पूर्ण सचिदानंद है। एक ही चित्त शक्ति तार धरे तीन रूप, वो एक ही जो शक्ति उनकी है स्वरूप, उस तीन रूप धारण करती है। अब वो तो तीन रूप कौन से हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। आनंदान से हलादिनी, उसमें जो आनंद देने वाला अंश है वो हलादिनी, सद अंश है संधिनी, जो सत है सचित सत है वो संधिनी, चिद अंश है संवित, जो सचित आनंद चित है उसको कैसे संवित शक्ति। यारे ज्ञानी करे माने, यारे ज्ञान करे माने, जो जानने वाले हैं वो इस भगवान की शक्ति को तीन रूप से जानते हैं। इन तीनों में से दो शक्तियां संवित और हलादिनी, ये जिसके हृदय में प्रवेश करती हैं उसकी भाव भक्ति जागृत होती है। जागृत भाव भक्ति है पहले से, लेकिन जागृत तब होगी जब ये दोनों किसी के हृदय में प्रवेश करें, संवित और हलादिनी। संवित कृष्ण की पहचान कराएगी और हलादिनी आनंद का अनुभव कराएगी भाव में। लेकिन ये दोनों कैसे हमारे हृदय में प्रवेश करेंगी, इसके दो ही रास्ते हैं, या तो भगवान कृपा करके किसी को, राधा रानी कृपा करे उसके हृदय में ये दोनों शक्तियां प्रवेश करें, और वो बहुत कम है, वो इतना कम है जितना ऑनररी पीएचडी की डिग्री कितने लोगों को मिलती है। ऑनररी किसी को, किसी को डॉक्टर की डिग्री देनी है ऑनररी तो कोई लाखों में एक को होती है, तो ऐसे मिलना इतना आसान नहीं है। तो फिर कहाँ से मिला, बोला भक्त से मिलेगा, जिस भक्त के हृदय में ये हो। और हमारे को लोभ और लालच हो और हमको ये निश्चय हो कि हमें तो ये प्राप्त करनी है, और उस भक्त को प्रार्थना करते रहें कि कृपा करो और वो दया करके दे दे, तो हमारे हृदय में भाव का उदय होगा, नहीं तो भाव का उदय होना संभव नहीं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में भाव प्रकट का साधन है। इसलिए महाप्रभु जी ने हमेशा कहा है कि भक्तों का संग सबसे मुख्य है, क्योंकि कोई भक्त निश्चित रूप से इस धरती के ऊपर हमेशा ऐसा भक्त जरूर ऐसे रहते हैं जिसके अंदर ये शक्तियां प्रवेश कर चुकी होती हैं और जिनका स्तर भाव भक्ति से ऊपर और कृष्ण प्रेम में वो रत होते हैं। भाव जिसमें हैं वो कैसे दिखाए उसके, एक तो आज सात्विक भाव उसमें प्रकट होते हैं। आज सात्विक भाव का मतलब है आंखों से आंसू आना, नृत्य करना, गाना नाचना ये। लेकिन ये कोई बड़ा अच्छा एक्टर है वो भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा अभिनेता है वो ये सब कर सकता है। इसलिए और कुछ कारण भाव के बताए हैं, नाव है या कुछ ऐसे लक्षण हैं, वो कोई और उसका नकल नहीं कर सकता है। वो जिसके अंदर आ जाएं तो समझना चाहिए कि ये भाव के स्तर के ऊपर पहुंच गया है। उसमें एक है कि समय का बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाता, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता है। हाँ, समय व्यर्थ नहीं गंवाता है, पूरा वृक्त है, कृष्ण आसक्त है। ऐसे नौ लक्षण है भाव भक्ति के। तो ये दोनों शक्तियां हमारे हृदय में प्रवेश करेंगी और ये हमारा, इसके लिए हमारे अंदर लोभ होना चाहिए। लोभ, ये लोभ अच्छा है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान के भक्तों के संग से। इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु जी का एक दुनिया में दुर्लभ चीज क्या है, बोला भक्तों का संग। और का सबसे बड़ा दुख क्या है, बोला भक्तों से बिछड़ना सबसे बड़ा दुख है। तो क्योंकि ये शक्तियां दोनों हैं, ये भगवान की अंतरंग शक्ति का ये तीन एक इसका रूप है। फिर संस्कृत में इसी का श्लोक है, संधि निरस सार अंश शुद्ध सत्व नाम। संधिनी शक्ति जो सैंधनी है उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। अब शुद्ध सत्व, ये शुद्ध सत्व का स्तर एक तो है तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन तीनों में दो गुणों को तो भगवत गीता में कहा है निकृष्ट है, उनसे बचना चाहिए, तमो और रजो से बचना चाहिए, सत्व में आना चाहिए। लेकिन सत्व में आने के बाद भी प्रकृति के गुणों के अधीन तो है ना, तो इस और सत्वगुण ये जो प्रकृति का है ना, ये कभी शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध नहीं होता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर तमो और रजोगुण कभी कभी आते रहते। जैसे हम कहें कि रात को 7 घंटे 6 घंटे सोना तो सबको है ना, सोना सो तो तमोगुण में है, तो तमोगुण तो सबके ऊपर रोज रहता ही है, तमोगुण से कोई नहीं बचा है, तमो सबके ऊपर प्रभाव तमोगुण का है। तो शुद्ध सत्वगुण का मतलब है जिस सत्वगुण में रजो और तमो का अंश भी नहीं हो, और ये शुद्ध सत्वगुण है। इस स्थिति को कहते हैं विशुद्धम सत्वम वासुदेवम शब्द्यते। विशुद्ध सत्व जो है, विशुद्ध सत्वगुण, विशेष रूप से शुद्ध सत्वगुण जो है उसको हला, उसको कहते हैं वासुदेव। और विशुद्ध सत्व जो वासुदेव है वो ऐसा हृदय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होता है। जैसे वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं आप गौर पूर्णिमा मनाओ या रामनामी मनाओ या जन्माष्टमी मनाओ, जब तक आपका हृदय शुद्ध सत्व रूप न बना है और भगवान आपके हृदय में प्रकट नहीं हुआ, तब तक आप इन दिनों के महत्व को सही माना में समझ नहीं सकोगे। सही माना में इन दिनों का महत्व समझना जब हमारा हृदय शुद्ध सत्व में स्थित हो और जब भगवान का उसके अंदर प्रकट्य हो और भाव के स्तर में भगवान की स्फूर्ति होती है और प्रेम के स्तर में भगवान सदा ही, भगवान और भगवान की लीलाएं सदा हृदय के अंदर स्फुरित होती रहती हैं और उस स्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता है, वो भगवान की स्फूर्ति। तो संधि रसार अंश शुद्ध सत्व नाम, भगवान एरस सता है यहां र विश्राम। भगवान किसके ऊपर स्थित है, बोला शुद्ध सत्व के ऊपर स्थित है। इसको कहते हैं भगवान का अस्तित्व शुद्ध सत्व पे ऊपर है। इसलिए हमारा शुद्ध सत्व होगा तब भगवान को जानेंगे। अब यही श्लोक लिखा है सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व को वासुदेव शब्द कहते हैं। यद ईयते तत्र पुमान अपावृत सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हय अधोक्षजय मे मनसा विधीयते। ये भागवत के चौथे स्कंद के तीसरे श्लोक में, चौथे स्कंद का तीसरा श्लोक दक्ष के यज्ञ के वर्णन में है। शुद्ध सत्व वो है जिसमें भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। अब फिर भगवान के ऊपर कोई पर्दा नहीं रहता है, अपने आप को अनावृत करके प्रकट करते हैं। कहां प्रकट करते हैं? मन में। भक्त के मन में भगवान अपने आप को निरावृत, बिना पर्दे के, बिना ढक। ये पर्दा कहाँ है? सातवें अध्याय भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नाम प्रकाशति सर्वस्य योग माया समावृत। मैं हमेशा अपने आप को ढक के रखता हूँ, लेकिन जब हमारे हृदय में विशुद्ध सत्व का स्तर आएगा तो फिर भगवान अनावृत हमारे मन में प्रकट होंगे। ऐसे वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए, तो वसुदेव ये विशुद्ध सत्व की परिभाषा है। कृष्ण भगवता ज्ञान संवितेर सार। अब दूसरी शक्ति की बात कर रहे हैं। संवित शक्ति का क्या काम है? ये सैंदनी थी, जो विशुद्ध सत्व है ये सैंदनी थी। तो संवित का काम क्या है? कृष्ण भगवता, कृष्ण भगवान की महिमा को, कृष्ण के तत्व को जानाए, पहचान कराए। कृष्ण भगवता ज्ञान संवितेर सार। संवित शक्ति का सार ये है कि कृष्ण का ज्ञान हमको कराए, और जो कृष्ण का ज्ञान होता है उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। भगवान के संबंध का ज्ञान जो कराए। ब्रह्म ज्ञानाधिक सब तारा परिवार। ब्रह्म ज्ञान अधिक, क्या इसका परिवार क्या है? संवित शक्ति का बोला ब्रह्म ज्ञान। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी है हम, आदि इसके अलावा और संबंध ज्ञान, सब तार परिवार, ये उसके सब अंतर्गत आते हैं। संवित शक्ति के अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान आता है, और ब्रह्म ज्ञान के आदि जो लिखा है और असल में क्या है? और है असल में भगवान का संबंध ज्ञान। ये सारे संवित शक्ति के विस्तार हैं या परिवार है। अब हलादिनी सार प्रेम। अब तीसरी राधा रानी का सार क्या है? प्रेम। प्रेम सार भाव, और प्रेम से ऊपर है भाव। भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। ये हमने कहा ना, प्रेम से ऊपर जो स्तर है, प्रेम स्नेह मान प्रणय भाव महाभाव। तो हलादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव, उसको महाभाव कहते हैं। वो महाभाव कौन है? महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। उस महाभाव का स्वरूप है श्री राधा ठाकुरानी। सर्व गुण खानी, सारे गुणों की खान है। कृष्ण कांता श्रोमणि, कृष्ण के प्रेम करने वालों से सबसे ऊपर श्रोमणि है। तयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्व अधिकता। महाभाव स्वरूपे न गुणेर अति वरीयसी। ये श्लोक उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी का, उसमें तयोर अपि उभयोर मध्य, इन सब के बीच में, सब गोपियों के अंतर्गत राधिका सर्वाधिका, सबसे अधिक वादा है। गोपियां बहुत हैं, गोपियों के पक्ष हैं, गोपियों के दो तो बड़े पक्ष हैं, सुपक्ष गोपियां विपक्ष गोपियां। सुपक्ष गोपियों को उसको कहते हैं, वो कहती हैं कृष्ण हमारा है, और विपक्ष कहते हैं हम कृष्ण की हैं। तो सुपक्ष जो हैं वो है राधा रानी का पक्ष, वो कहते हैं कृष्ण हमारा है, और विपक्ष में जो हैं वो है चंद्रावली, वो कहती हैं हम कृष्ण के हैं। अब इसके बाद दो और ग्रुप हैं, एक तो राधा रानी के पक्ष का है और एक चंद्रावली के पक्ष है, और एक बीच में है जो न्यूट्रल है, जो दोनों के बीच वाला है। तो ऐसे रहे गोपियों के अलग अलग पक्ष हैं। और ये पहला श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण का, उसमें चार तीन प्रकार के गोपियों के नाम लिखे हुए हैं, तारिका पाली ललिता राधा वो कृष्ण जो अखिल रस मूर्ति है, अखिल रस मूर्ति है, ये बहुत बड़ा गंभीर तत्व है। महाभाव स्वरूप है ये ना, और राजा रानी महाभाव स्वरूप है। और आगे लिखते हैं, कृष्ण भाव कृष्ण प्रेम भाविता यहाँ रा चितेंद्रिय काय। राजा रानी क्या का, राजा रानी का स्वरूप क्या है? कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। भाविता यहाँ चित इंद्रिय काया, उसका चित्त चेतना इंद्रिय उनके सारे आंख नाक कान जो भी है, और काया शरीर, ये सब चित्त इंद्रिय काया, चित्त इंद्रिय का कृष्ण प्रेम भाविता यहाँ चित इंद्रिय काया कृष्ण निज शक्ति राधा कीरड़ार साय। ये राधा रानी कृष्ण की लीला की सहायक है, उसका सब कुछ, उसका चित्त मन इंद्रियां शरीर केवल राधा कृष्ण के ही भाव से परिपूर्ण है, भाव से भरा हुआ है। और फिर ये ब्रह्म संहिता का श्लोक लिखा है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विभात ताभिर एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवस्त अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब कहते हैं कृष्णेर कराये यछे रस आस्वादन कीरडार सहाय यछे शून्य विवरण। अब ये बात सुनो कि कृष्ण का राधा कैसे रस आस्वादन कराती है, इसका विवरण सुनो। अवतारी कृष्ण यछे करे अवतार, कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है, सारे अवतारों का स्रोत है। अंशिनी राधा हैते तीन गुणेर विस्तार, ऐसे ही जैसे कृष्ण से कई अवतार निकलते हैं, ऐसे राधा रानी से तीन गुणेर विस्तार, तीन खास विस्तार होते हैं। अब राधा रानी के तीन कौन से विस्तार हैं? वैभव गण येन तहार अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महेशीर तति। आप कहते हैं पहले है, वैभव गण, वैभव गण, वैभव गण का मतलब है उसका विस्तार, राजा रानी का विस्तार। अंग विभूति, अंग विभूति का मतलब उनके शरीर का विभूतियां, जैसे हमने दसवां अध्याय भगवद गीता का विभूति योग है, उसकी विभूतियां ये कौन है? एक तो है अंग विभूति और दूसरा है बिंब प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब। बिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब का मतलब क्या? परछाई। और बिंब का मतलब मुख्य फोक, एक बिंब और प्रतिबिंब, तो तीन हो गया, एक अंग विभूति, एक बिंब, एक प्रतिबिंब। ये राधा रानी के तीन विस्तार। अब कौन है इसके नाम सुन लो, ये तो बताया टेक्निकल, अब टेक्निकल के बाद बता रहे हैं ये वैभव गण ये न तार अंग विभूति, ये हो गया। इसके बाद है आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गण, आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गण काया व्यू रूप तार रसेर कारण। जो गोपियां हैं वृंदावन में, वो राधा रानी के अंग का विस्तार है, उनके अंग से निकली है। आकार उनका रूप, स्वभाव उनका, जो स्वभाव है उनमें भेद है। ब्रज देवी गण, ब्रज के गोपियों में काया व्यू, वो राजा रानी के शरीर का विस्तार है। रूप तहार रसेर कारण, और भगवान के रास के अंदर वो विशेष कारण के लिए उनका प्रकट्य हुआ है। और फिर बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास, रस के अंदर एक नहीं अनेक चाहिए। लीला रस है लागी बहुत प्रकाश, इसके लिए राधा रानी एक से अनेक में हो गई। एक तो राधा रानी का विस्तार हो गया गोपियां, ये है काया व्यू। अब दूसरा क्या है विस्तार? दूसरा विस्तार उनका है लक्ष्मिया वैकुंठ में, और तीसरा उसका प्रतिबिंब विस्तार कौन सा है? द्वारका की रानिया मैशी गण। ये तीनों राधा रानी का विस्तार है। अब गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता श्रोमणि, ये विशेष राधा रानी गोविंद को आनंद देती है। गोविंद सबके इंद्रियों को आनंद देता है लेकिन गोविंद को आनंद देती है राधा रानी। देवी कही द्योता अपना परमा सुंदरी किम्वा कृष्ण पूजा क्रीड़ार वसती नगरी। देवी का मतलब है ये कृष्ण, ये देवी है, देवी की परिभाषा। देवी का मतलब है बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रेम करने, प्रेम का आकार, जो कृष्ण के प्रेम का आगार हो। अब राधा रानी कैसी है? कृष्णमयी, वो कृष्णमयी मतलब सब कुछ कृष्ण। कृष्ण यार भीतरे बाहर, उसके अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण। यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्पुर, जहां देखे वहां कृष्ण दिखता है और कुछ नहीं। ये राधा रानी का स्वरूप है। ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, काम क्या करती है? कृष्ण वांचा पूरी रूप करे आराधना, बस उनका एक ही काम है कृष्ण की इच्छा कैसे पूरी करें। अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने, इसलिए उनका नाम है राधा, क्योंकि कृष्ण की आराधना करती है, उनकी सब इच्छा पूरी करते हैं। अब पूर्ण आहुति में कहते हैं इसलिए, अतएव सर्व पूज्या परमा देवता सर्व पालिका सर्व जगतेर माता, राधा सब जगत की माता है, सबका पालन पोषण करती है। सर्वकांत सर्व श्रीमती राधा, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। ये दोनों एक ही हैं, एक शक्ति एक शक्तिमान है। अब ये दोनों क्या हो गए? राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप है, एक लेकिन दो रूप धारण किया। अब क्या किया उन्होंने? प्रेम भक्ति सिखाई ते आपने अवतारी, प्रेम भक्ति सिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने फिर अवतार लिया। राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी, राधा का भाव और राधा का रंग को अंगीकार किया। श्री कृष्ण चैतन्य रूप कैला अवतार, श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार हुए। यही तो पंचम श्लोक अर्थ प्रचार, यही पांचवा श्लोक जो था अभी पढ़ा था राधा है कृष्ण, उसका अर्थ ये है। यहां तक एक श्लोक का अर्थ चला है, अब इसके बाद का जो चलेगा उसको छुट्टी करते हैं। अब छठे श्लोक की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। मैं कह रहे हैं षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिला प्रकाश, प्रथम कहिया से ही श्लोकेर आभास। वो क्या था? अवतारी प्रभु परिचारिला संकीर्तन एहि बाहे तु पूर्व करिया छे सुनिश्चन। पहले हमको बताया आपको कि भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करने के लिए आए थे, ये बाहर का कारण है। अंतरंग कारण क्या है अब आपको बताने जाऊंगा, वो भगवान ने चाहा तो फिर किसी वक्त अंतरंग कारणों का वर्णन करेंगे। यहां वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। ये था, ये थोड़े गहरे तत्व थे, इसको समझने से क्या पता लगता है कि क्या है ये। नहीं तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं लेकिन शास्त्रों के अंतर उन चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो फिर हमारे अंदर में संतुष्टि नहीं होती। तो ये बहुत चैतन्य चरितमृत में बहुत सी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझने के लिए बताई गई है। हरे कृष्णा। जगन्नाथ मिश्र महोत्सव की, गौरंग महाप्रभु प्रकट्य की।